রঙ্গা বলিতে হবে পুলকাশরি হরি হরি বলিতে না জ্ঞানে ভাবিনি আরা কাবেনিতাই চান করুণা হইবে হারা কাবে নিতাই চান করুণা হইবে বসানা মোরা কবে তুছাবে বিষয়া ছড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে বিষয়া ছড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে কবে আমহে রাবো শিবৃন্দাবন রঘুনাথ পদে হই বেয়কুতি রূপ রঘুনাথ পদে হই বেয়কুতি বুঝো বসে যুগল রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোরোয়া রঘুনাথ পদে রহু মোরোয়া প্রার্থনা করো এ সদা নরোত্তম দা Thank you. रघुनाथ पदे रहु मोरवा रूप रघुनाथ पदे रहु मोरवा रूप रघुनाथ पदे रहु मोरवा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दा रूप रघुनाथ पदे रहु मोरवा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दा रूप रघुनाथ पदे रहु मोरवा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
जय विश्वपाद परमहंस परिव्रज आचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद्भागवत सभा चनारवन भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैश्ववृंद की जय नवाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा मई यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबसे पहले हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ पे पधारे हैं और विशेष रूप से हमारे JCC के जो चेयरमैन हैं फेस्टिवल चेयरमैन श्री ML सतीजा जी हमारे समक्ष विराजमान हैं उनका हार्दिक धन्यवाद हम लोग करना चाहेंगे श्री राधा पार्षद जी मंदिर की तरफ से जिनके अथक प्रयास से ये गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है और इससे पहले भी बहुत भव्य तरीके से शोभा यात्रा बनाई गई थी। हालांकि आप में से कई भक्त उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन अगर आप मौजूद होते तो उसका पूरा आप लाभ उठाते। तो बहुत ही उत्साहित होकर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और गौर पूर्णिमा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और पंडाल का कार्यक्रम भी है, अभी ये उत्सव समाप्त नहीं हुआ, ये तो शुरू हुआ है अभी। तो कल पंडाल का कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें गौर पूर्णिमा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें आप गौर लीला भी देखेंगे, नाटिका भी देखेंगे, साथ में अन्य कार्यक्रम भी होंगे। तो वहाँ पर भी आप लोग मौजूद हों, कल भी होगा और परसों गौर पूर्णिमा के उत्सव के उपलक्ष्य में भी वहाँ पंडाल में कार्यक्रम होगा। तो आप सभी भक्त लोग वहाँ पर भी पधारें। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को, हमने संक्षेप में आपको बतलाया जिस तरह से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं, 13वें अध्याय में सूत्र रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जैसे हमने कल बताया था कि आज हम लोग उन लीलाओं का वर्णन करेंगे जो शिवास आंगन में घटित हुए। तो शिवास पंडित जो हैं महाप्रभु के बहुत ही गुहेतम पार्षदों में से हैं, पंच तत्व में से एक है शिवास पंडित, जिनका जन्म चटाग्राम में हुआ था और नारद मुनि के अवतार बताए जाते हैं। तो शिवास आंगन जहां पर चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ प्रत्येक दिन वहां पर अनेकों लीलाएं करते थे, ये जो शिवास आंगन है इसको रासस्थली से अभिन्न बताया गया है। और यहाँ जो लीलाएं घटित हुई बहुत ही रोचक लीलाएं हैं और बहुत आनंद प्रदान करने वाली हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। तो कई लीलाओं का हम लोग वर्णन सुनेंगे, समय कम है इसलिए कुछ इसमें से लीलाएं हम लोग लेंगे। हरे कृष्ण। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनै कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। तो यहाँ पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के प्रारंभ में वो प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, जिनकी भुजाएं क्या है, घुटने तक आती है। आजानुलंबित भुजा हो, आजानुलंबित का मतलब होता है कि लंबे हाथ हैं चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के हाथ बड़े लंबे हैं, 7 फुट की ऊंचाई थी उनकी। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ऊंचाई कितनी थी? 7 फुट के थे और उनके हाथ घुटने तक आते थे। हमारे हाथ तो घुटने तक नहीं आते हैं, बैठने पर आते हैं, लेकिन खड़े होने पर किसी के हाथ घुटने तक नहीं आते हैं। तो ये भगवान साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के उनके जो हाथ हैं घुटने तक आते हैं। आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ, और उनकी कांति कैसी है? कनक यानी कि
स्वर्ण कांति के हैं और इन्होंने क्या किया, संकीर्तन संकीर्तन ही कपितरो, इन्होंने संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन क्योंकि इन्होंने किया है, यह संकीर्तन आंदोलन के क्या है, पिता है, पिता मतलब इन्होंने ही संकीर्तन आंदोलन को जन्म दिया है, गतिमान किया है। जैसे हमने कल बताया था कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि उन्होंने तो नवद्वीप में ही संकीर्तन किया या भारतवर्ष में दक्षिण भारत में या कुछ अन्य स्थानों में संकीर्तन किया, तो कैसे ये हम जान लें या मान लें कि चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन प्रारंभ में किया वो पूरे विश्व भर में फैल गया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तो नहीं किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन को गतिमान किया, इसको प्रारंभ किया, इसको इसकी शुरुआत करा दी। और ये जब गतिमान हुआ है, जिस तरह से भगवान जब इच्छा करते हैं, सृष्टि करने की इच्छा करते हैं, और उनकी सृष्टि करने की इच्छा से जो है सृष्टि होने लगती है, जिस तरह से जब आप टंकी में पानी भरते हैं मोटर चलाने के बाद तो घर में आपके पानी आता है, तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, नवद्वीप में संकीर्तन प्रारंभ किया। वो संकीर्तन प्रभुपाद कहते हैं कि केवल पूरे विश्व भर में नहीं फैलेगा बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा संकीर्तन। और ये वास्तव में सच है, प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे पृथ्वी में संकीर्तन चल रहा है, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वम्बरो द्विजवरो युग धर्म पालो, तो ये क्या है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान भी अलग अलग परिवारों में जन्म लेते हैं, अलग अलग युग में, त्रेता युग में क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए, द्वापर युग में वैश्य परिवार में प्रकट हुए, और कलयुग में ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए। तो भगवान तो कोई भी जाति या कुल या वर्ण को या आश्रम को अपना सकते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। इसी तरह से भक्त भी क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए, प्रचार करने के लिए कोई भी वर्ण या आश्रम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर बताया कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और सभी जीवात्माओं के पालक, सभी जीवात्माओं के पालक। विश्वम्भरो, विश्वम्भरो एक नाम चैतन्य महाप्रभु का क्या है, विश्वम्भर, विश्वम्भर ये नाम दिया था नीलांबर चक्रवर्ती ने। उनके जन्म के उपरांत कई नाम उनको दिए गए थे। जब पड़ोस की माता आई थी तो उन्होंने किस नाम से पुकारा था, गौरहरि के नाम से पुकारा था, कल हमने बताया। और नीलांबर चक्रवर्ती जब आए तो उन्होंने कहा ये विश्वम्भर के नाम से जाने चाहेंगे। तो विश्वम्भर और सीता ठाकुरानी जो आए, अद्वैताचार्य की भारी जो आए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमाई के नाम से पुकारा, ताकि जानते हैं क्यों, एक तो ये कारण कि वो नीम वृक्ष के नीचे उनका प्राकट्य हुआ, दूसरा कि नीम के पेड़ के नीचे अगर कोई होता है या नीम रखा जाता है तो उससे अमंगल नहीं होता है, कोई भूत विशाच नहीं आते हैं, कोई अशुभ नहीं होता है। तो इस ये जो बालक है इसके साथ कुछ अमंगल ना हो जाए, कुछ अशुभ ना हो, ये भावना रखते हुए सीता ठाकुरानी ने उनको निमाई के नाम से पुकारा। तो इस प्रकार कई नामों से भगवान को जाना जाता है। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, और पूरे सृष्टि के, पूरे जगत के, पूरे विश्व के एकमात्र क्या है, प्रिय हैं, जगत प्रिय, और साथ में करुणा अवतार हो, और बहुत ज्यादा करुणा भरी है इनमें। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा अति आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक, नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है। ये यहां से माला हटा लीजिए, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महापुरुष से पूर्व आए थे, महापुरुष से 13 साल बड़े थे, 13 साल। नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ था 1473 में एक चक्र ग्राम में, बरबम जिले में, बरबम जिले वीर चंद्रपुर कहा जाता है, एक चक्र ग्राम। आप में से कितने लोगों ने यह नाम सुना है? आप में से कितने भक्तों ने नित्यानंद प्रभु का नाम सुना था इस कौन में आने से पहले? बस सिर्फ दो। आप में से कितने भक्तों ने सुना था, आया सुना है या जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं? बहुत अच्छी बात। तो नित्यानंद प्रभु बहुत छुपे हुए हैं, बहुत ज्यादा ढके हुए हैं। महाप्रभु तो है ही छुपे हुए, लेकिन उनसे ज्यादा छुपे हुए हैं नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु कोई ढूंढ निकालता है या उनकी कोई कृपा प्राप्त कर लेता है तो निश्चित रूप से उस भक्त के ऊपर महाप्रभु की कृपा हो जाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को बहुत डांटा, जो इस ग्रंथ के लेखक हैं। जब वो अर्चे वगैरह की सेवा पूजा कर रहे थे तो एक नित्यानंद प्रभु के बहुत अनन्य भक्त आए उनके घर पे, जिनका नाम था मीन केतन रामदास। और वो नित्यानंद प्रभु के बहुत अनन्य भक्त थे, लेकिन कविराज गोस्वामी के जो भाई थे उन्होंने उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्होंने विशेष नहीं ध्यान दिया, क्योंकि ये जो उनके भाई थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, उनकी श्रद्धा महाप्रभु में थी लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं थी। इस कारण से वो अपराध कर रहे थे। और जब उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया मीन के रामदास को देखकर, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत क्रोधित हुए और मीन के रामदास हंसते हंसते वहां से चले गए। ये तो बिल्कुल किसकी तरह लगता है? रोमहर्षण सूत की तरह लगता है, जो भागवत कथा कर रहे थे लेकिन बलराम जी के आने पर खड़े नहीं हुए, प्रणाम भी नहीं किया और कथा करते रहे। तो बलराम जी ने क्या किया, घास के तिनके से रोमहर्षण सूत को मार दिया। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। ऐसा करके वो हंसते हंसते चले गए, उन्होंने कोई अपराध तो नहीं लिया, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए अपने भाई के ऊपर और अपने भाई को उन्होंने त्याग दिया। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी से, और सपने में आकर उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाएं। और वृंदावन आकर फिर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जैसे हमने कल बताया था, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की। तो ये ग्रंथ बड़ा ही बहुमूल्य ग्रंथ है, ये गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत ही प्रिय ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। उत्तरी भारत में और अन्य स्थानों में तो लोग इस ग्रंथ के बारे में इतना जानते नहीं है, लेकिन अगर आप सीधा मायापुर जाएंगे या बंगाल में जाएंगे जहाँ गौड़िया वैष्णव हैं, वो इन ग्रंथों को बहुत पसंद करते हैं। और चैतन्य भागवत को विशेष रूप से तो प्रत्येक दिन पढ़ा जाता है। जैसे ईसाइयों में बाइबल बड़ा प्रचलित है, उसी तरह से गौड़ देश में, बंगाल में प्रत्येक घर में चैतन्य भागवत होता है। और खासकर जो महाप्रभु के भक्त हैं उनके घर में, प्रत्येक घर में चैतन्य भागवत आपको देखने को मिलेगा। तो हम कुछ जो लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जो शिवास पंडित के आंगन में या शिवास पंडित के घर पर घटित हुई, उन लीलाओं का हम लोग वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इसका सारा वर्णन है कि बहुत कम समय है, और अगर वर्णन ना किया तो फिर उसका पूरा आनंद भी नहीं आता है, है ना। इसलिए उसको हम लोग संक्षेप में ना करके थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, और जब जब समय, जब भी मौका मिलेगा तो उसको और भी आगे बताने का प्रयास करेंगे। तो ये 8वां अध्याय है चैतन्य भागवत का मध्य खंड, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हुई, विशेष रूप से इस लीला को कहा जाता है शत प्रहरीय लीला या शत प्रिय भाव महाप्रकाश। चैतन्य महाप्रभु ने 21 घंटे के लिए जो उन्होंने भाव में, भाव दशा में उन्होंने जो लीलाएं की, और कई भक्तों को नाना प्रकार के वरदान दिए, उसके बारे में हम वर्णन सुनेंगे चैतन्य भागवत से। तो ये आठवां अध्याय है, यहां से हम प्रारंभ करते हैं। नित्यानंद जी शिवास के घर में ठहरते थे और निरंतर बाल भाव में रहते थे और कोई दूसरा भाव उनमें उठता ही नहीं था। तो नित्यानंद प्रभु शिवास पंडित की जो पत्नी थी मालिनी देवी, उनको अपनी माता के रूप में देखते थे। और जब भी शिवास पंडित के घर पे जाते, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, जब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो अवधूत की तरह रहते थे और बच्चे की तरह हरकत किया करते थे जब वो शिवास पंडित के घर पे आते। नित्यानंद जी शिवास के घर पे ठहरते थे और निरंतर बाल भाव में रहते थे और कोई दूसरा भाव उनमें उठता ही नहीं था। वे अपने हाथ से उठाकर भात भी नहीं खाते। श्री मालिनी देवी उनको पुत्र के समान समझकर उन्हें आप भात खिलाया करती थी। पतिव्रता मालिनी देवी नित्यानंद जी के आचरण के मर्म को जानती थी और उनके इस प्रकार सेवा करती थी जैसे माता पुत्र की करती हैं। एक दिन प्रभु गौरचंद्र शिवास के साथ बैठकर कृष्ण चरित्र कथा कर रहे थे। तो इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु वात्सल्य भाव का आस्वादन करते थे और गौरचंद्र भी शिवास पंडित के घर पर कृष्ण कथा किया करते थे। उस समय पंडित शिवास की परीक्षा के लिए प्रभु विश्वंभर बोले, शिवास तो अभी परीक्षा ले रहे हैं। किसकी परीक्षा ले रहे हैं? शिवास पंडित की परीक्षा ले रहे हैं महाप्रभु। वो कह रहे हैं, तुम इस अवधूत नित्यानंद को निरंतर अपने यहां क्यों रख रहे हो? इसकी जाति कुल का कुछ तो पता नहीं। तुम बड़े उदार हो, परंतु मैं ये कह देता हूं कि यदि तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा चाहते हो तो इस अवधूत को झट घर से दूर कर दो। बोलते अपने अगर जाति बचाना चाहते हो तो इसको यहां से बाहर करो। क्योंकि क्या होता था उस समय सैकड़ों साल पहले, या जब यहां पर अंग्रेजों का भी राज्य था, या तो आप को किसी ने मुसलमान ने मान लीजिए पानी पिला दिया, उसके घर में जाकर आपने अगर पानी पी लिया तो ब्राह्मण समाज क्या करता था, वो आपको निष्कासित कर देगा और आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको भी मुसलमान बनना पड़ेगा। या क्या करते थे, कई बार किसी को मुसलमान बनाना होता था तो कई लोग क्या करते थे, वो अपना लोटे में से पानी लेकर किसी ब्राह्मण के ऊपर छिड़क देते थे। तो ये भी इस कारण से भी क्या हो जाता था कि ब्राह्मण समाज से उस व्यक्ति को निष्कासित कर देते थे। तो बड़ी अजीब सी प्रथा थी उस समय। और यहाँ तक कि जो शूद्र जाति के लोग थे वो मंदिर नहीं जा सकते थे, ब्राह्मण लोग नहीं जाने देते थे, या ब्राह्मण किसी शूद्र को देख लेगा उसकी परछाई पड़ जाएगी तो फिर से वो स्नान करने चला जाएगा। तो बड़ी अजीब सी प्रथा थी, यानी कि ब्राह्मण को देखा जाता था, जन्म से देखा जाता था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को आपने अपने घर पर रखा हुआ है शिवास, तो उस जिसका जाति का पता नहीं है, कुल का पता नहीं है, तो क्या होगा, तुम ही अपमानित होगे। तो अपनी रक्षा करो, कुल की रक्षा करो, नहीं तो तुम अपनी जाति और कुल की रक्षा कैसे करोगे। शिवास पंडित कुछ हंसते हुए बोले, आप मेरी परीक्षा क्यों करते हैं प्रभु, यह उचित नहीं है। जो एक दिन के लिए भी आपको भसता है वे मेरे लिए प्राण समान प्रिय है। फिर ये नित्यानंद जी तो आपके देह हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि श्री नित्यानंद जी मदिरा और यवन स्त्री को भी ग्रहण कर लें, यदि वे मेरी जाति प्राण धन सबको नष्ट कर भी कर दें, तो भी मेरे चित्त में उनके प्रति विपरीत भाव कदापि नहीं होगा। अगर आप कोई ये भी कहे कि नित्यानंद प्रभु ने किसी यावनी का संग किया है या मदिरा पान किया है, अगर मैं देख भी लूं फिर भी मेरी श्रद्धा उनमें कम नहीं होने वाली है। कि नित्यानंद प्रभु कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। शिवास के मुख से इतना सुनते ही प्रभु हंसकर हुंकार करते हुए उनके वक्षस्थल पर लिपट गए और बोले, क्या कहा शिवास पंडित, नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास, मेरे गुप्त नित्यानंद को तुम जान गए, मैं संतुष्ट होकर तुमको वर देता हूं। अब देखिए महाप्रभु वर दे रहे हैं किसको, शिवास पंडित को, कि स्वयं लक्ष्मी को नगर के घर घर में भिक्षा मांगनी पड़े तो संभव है, परंतु तेरे घर में, आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। हो सकता है साक्षात लक्ष्मी जी को क्या करना पड़े, स्वयं भिक्षाटन करना पड़े, सड़क पे आना पड़े, लेकिन आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। आपके घर के कुत्ते बिल्ली आदि सबको मुझ में निश्चल भक्ति होगी। मैं नित्यानंद को तुम्हें समर्पित करता हूं, आप स्वयं सब प्रकार से उनको संभाल के रखना। शिवास को वर देकर प्रभु महाप्रभु चले गए। तो इस प्रकार ये घटना घटी कि जिसमें ये पता चलता है कि कितनी श्रद्धा थी शिवास पंडित के नित्यानंद प्रभु में, और ये श्रद्धा ऐसी थी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। शिवास पंडित की श्रद्धा सब में थी, अद्वैताचार्य में थी, नित्यानंद प्रभु में थी, गदाधर पंडित में भी थी, और नित्यानंद प्रभु के साथ साथ महाप्रभु में थी। तो एक दिन प्रभु बोले, भाइयों एक सार बात सुनो, वह ये है कि हम सबों को की रात्रि क्यों वर्त जाए, आज से सब ये नेम कर लो कि रात्रि काल में सब मंगलमय कीर्तन किया करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, अपने पार्षदों को बोला, गुहितम पार्षदों को बोला कि हम रात्रि को भी अब कीर्तन करेंगे। रात को हम क्यों सो जाते हैं, रात को भी कीर्तन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर 100 साल की आपकी आयु है तो 50 साल का उम्र आपका समाप्त हो गया सोने में, तो केवल 50 साल का ही जीवन बिताते हैं, है ना। और रात को सपने देखते हैं और दिन में भी सपने देखते हैं, क्योंकि जब रात को सपने देखते हैं तो दिन का याद नहीं आता है, और दिन को जब कार्य करते हैं तो रात के सपने भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा हम सपने में ही रहते हैं। तो पूरा जीवन सपने में बीत जाता है, और कब शरीर छोड़ते हैं हम पता ही नहीं चलता। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसा ही जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो यहां पर यह बात बताई गई है कि महाप्रभु कह रहे हैं भक्तों को कि अब प्रत्येक दिन हम क्या करेंगे, हम संकीर्तन करेंगे। मैं भी सब भक्तजनों के साथ संकीर्तन करके भक्त स्वरूपनी गंगा में मज्जन किया करूंगा। आपके धान प्राण तो दूसरे के कल्याण निमित्त है, अतएव श्री कृष्ण नाम सबको सुनाओ जिससे जगत का उद्धार हो। यह मंगलमय प्रसाद सुनकर सब वैष्णों को बड़ा उल्लास हुआ। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने रात्रि में नित्य संकीर्तन विलास आरंभ कर दिया। अब तो प्रति रात्रि शिवास के घर कीर्तन होने लगा, किसी दिन आचार्य चंद्रशेखर के घर भी होता था। तो कभी कभी चंद्रशेखर आचार्य के घर पर होता था, और कभी कभी कहां होता था, शिवास पंडित के घर पर होता था। जो चंद्रशेखर आचार्य भी महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से थे, और उस स्थान में शिल भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने मंदिर की स्थापना की, और वहीं पे उनकी समाधि भी है, चंद्रशेखर आचार्य का भवन जो है। किसी दिन आचार्य चंद्रशेखर के घर भी होता था। श्री नित्यानंद, श्री गदाधर, श्री अद्वैत, शिवास, विद्यानदी, मुरारी, हिरण्य पंडित, हरिदास, गंगादास, वनमाली, विजय, नंदन आचार्य, जगदानंद, बुद्धिमंता खान, नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, राम, गरुड़ाई, गोविंद, गोविंदानंद, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, वक्रेश्वर, श्रीगर्भ, शुक्लांबर, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय आदि सब वहां कीर्तन में सम्मिलित होते। तो ये उन पार्षदों का नाम लिया जा रहा है जो संकीर्तन में क्या करते, भाग लेते। श्री चैतन्य चंद्र के अनंत भृत्य हैं, मैं तो थोड़ों का नाम जानता हूं, सभी प्रभु के नृत्य में साथ रहते थे। अब कृष्णदास वृंदावन दास ठाकुर ये कह रहे हैं कि हालांकि तो उनके तो असंख्य उनके पार्षद हैं, गौर सुंदर के असंख्य पार्षद हैं, लेकिन बस मैं थोड़े पार्षदों का ही नाम ले पा रहा हूं। वहां पार्षदों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता था। एक तो प्रभु की हुंकार ध्वनि, दूसरे रात्रि के सम्मिलित हरि ध्वनि, ये दोनों मिलकर ऐसा घनघोर शब्द होता था मानो वे ब्रह्मांड भेदन कर रहा हो। इतने उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन चलता था शिवास पंडित के घर में कि ऐसा लगता था कि पूरे ब्रह्मांड को भेद कर जा रहा हो। उसे सुनकर अब हुआ गया कि जब ये संकीर्तन चल रहा था तो कई पाखंडी, कई ऐसे नास्तिक लोग थे, वो संकीर्तन को सुनकर खुश नहीं होते थे। कोई कहता, अरे ये सब लोग रात में मदिरा लाकर पीते हैं। कौन? ये जो संकीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद ने जब पाश्चात्य देश में जब आंदोलन शुरू किया था और कई लोग जब भक्तों को देखते थे सड़क में नृत्य करते हुए, तो ये सोचते थे ये जो नृत्य कर रहे हैं निश्चित रूप से इन्होंने नशा किया है, ये लोग नशा करके नृत्य कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई नाच थोड़ा ना सकता है सड़क में बेशर्म होकर। और यहां भी भारतवर्ष में भी एक हमारे जो फिल्म के प्रोड्यूसर एक्टर डायरेक्टर है देवान ने भी मूवी बनाई थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो जो इस हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं वो शायद नशा करके जो है कीर्तन नृत्य करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं कई बार। लेकिन उनको क्या पता कि असली नशा क्या है, ये हरिनाम संकीर्तन ही अपने आप में नशा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कहता, इन्हें मधुमती देवी की सिद्धि है। कोई कहता, हम पांच रात सोने ही नहीं पाते, बस बोलो बोलो और हुंकार की रोज रात भर सुना करते हैं। इस प्रकार के पाखंडी लोग भगज करके मरते रहते, परंतु श्री सचिनंदन अपने आनंद में कीर्तन किया करते थे। तो बाहर जो कई ऐसे नास्तिक लोग थे, पाखंडी लोग थे या विषयी लोग थे जो संकीर्तन को सुनकर खुश नहीं होते थे और वो नाना प्रकार की बातें करते, नाना प्रकार की चर्चा करते और अपना ही अंदाजा लगाते, मनोकल्पना करते कि शायद ऐसा हो रहा अंदर, वैसा हो रहा है। कीर्तन सुनने मात्र में ही प्रभु की सुदबुद्ध जाती रहती और वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ते। प्रभु भेकट के इतने जोर से पछाड़ खाते कि सभी डर जाते कि कहीं पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। उस कोमल शरीर पर इतनी पछाड़े पड़ती देखकर माता शची दोनों आंखें बंद कर लेती और गोविंद का स्मरण करने लगती। प्रभु तो भक्त भाव के आदेश में आनंद की पछाड़े खाते तथा भी स्नेहवश में मां बड़ी दुखी होती। माता उन पछाड़ों को रोकने का उपाय नहीं जानती थी, अतः भगवान से अपार अनुनय विनय करती हुई ये कहती कि हे कृष्ण, मेरे ऊपर कृपा करो और यही वर दो कि जिस समय मेरा विश्वंभर पछाड़ खाए उस समय मुझे उसके गिरने का पता ना चले। हे महान हृदय वाले कृष्ण प्रभु, बस इतनी कृपा करो, यद्यपि उसे तो परमानंद में डूबे रहने के कारण कोई दुख नहीं होता, फिर भी मैं उसके गिरने को ना जान पाऊं तो बड़ा सुख मानूंगी। माता के चित्त की इच्छा, ऐसी इच्छा को जानकर प्रभु गौरचंद्र ने उनको उसी प्रकार का परमानंद दिया। अब तो जितने समय तक प्रभु हरि संकीर्तन करते उतने समय तक माता को बाहर की कुछ सुदबुद नहीं रहती। प्रभु को आनंदमय कीर्तन नृत्य से कभी अवकाश ही नहीं था, बस रात दिन भक्त जन उनको घेर कर गाते नाचते रहते। किसी दिन प्रभु के घर ही भक्त जन सब गाते और सचिनंदन नाचते। कभी ईश्वर भाव में प्रभु का प्रकाश होता तो कभी रोते, मैं दास हूं ऐसा कहते। तो शची माता जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं। कई बार महाप्रभु कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते क्या होता, जमीन पर गिर पड़ते और ये देखकर शची माता बहुत दुखी हो जाती, कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसा तो नहीं है कि गिरने पर हड्डियां ही टूट जाएं। इतनी जोर से उछलते, उछलना तो बड़ा अच्छा लगता सबको, लेकिन जब उछल के वो नीचे गिरते जमीन पर, वो कोई सहन नहीं कर पाता। और शची माता कौन है? स्वयं माँ यशोदा है। माता यशोदा भी इसी तरह से कृष्ण के लिए हमेशा चिंतित रहते, क्योंकि जब भी कृष्ण जाते हैं गोचारण लीला के लिए, प्रत्येक दिन कोई ना कोई असुर को मार के आता और सखा लोग उसका वर्णन करते कि आज कृष्ण ने इस असुर को मारा, आज बलराम ने इस असुर को मारा, या बलराम जी बोलते कि कृष्ण ने इस असुर को मार दिया और माता यशोदा बोलती बलराम जी को कि कृष्ण का ध्यान रखना, जब भी जंगल में जाओ गोचारण लीला के लिए कृष्ण की विशेष रक्षा करना। तो माता यशोदा निरंतर प्रार्थना करती कृष्ण के लिए। अब कृष्ण के लिए किससे प्रार्थना की जा सकती है? कृष्ण से, कृष्ण के लिए तो कृष्ण से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन ये वात्सल्य प्रेम था माता यशोदा का, इसी तरह से शची माता का वात्सल्य प्रेम था। योग माया का पर्दा जब लग जाता है या योग माया के पर्दे से ढक जाता है, भक्त ढक जाता है योग माया के पर्दे से, तो उस समय वो भूल जाता है कि कृष्ण कौन है, भगवान है। उस योग माया के पर्दे से भक्त ये सोचने लगता है कि कृष्ण तो मेरा पुत्र है, या कृष्ण मेरे पति हैं, या कृष्ण मेरा मित्र है। इस प्रकार से भगवान के साथ कई प्रकार के आदान प्रदान होते हैं प्रेम के। भगवान की प्रेममय सेवा नाना प्रकार से होती है। तो यहां पर माता शची का कौन सा प्रेम है? वात्सल्य प्रेम दिखाई पड़ता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ इस प्रकार का प्रेमय आदान प्रदान करते हैं। हालांकि भगवान के कोई माता पिता नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, अपने प्रेमी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं और उन्हीं के पुत्र बन जाते हैं और मातृभाव वात्सल्य भाव का रसास्वादन करते हैं। जब नरसिंह भगवान की लीला हुई थी, भगवान नरसिंह देव ने लीला की थी और हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया था और हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर बैठ गए थे भगवान नरसिंह देव, और प्रहलाद महाराज के पास कई लोग प्रयास कर रहे थे जाने, प्रहलाद महाराज को कह रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि नरसिंह भगवान के सामने जाए, क्योंकि भगवान नरसिंह देव अभी भी बहुत क्रोधित थे, सिंहासन में बैठने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तो लक्ष्मी जी भी घबरा रही थी, शिव जी भी नहीं आगे बढ़े, ब्रह्मा जी भी घबरा रहे थे, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तो उन सब ने, ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद महाराज से कि आप आगे जाओ और आप भगवान से प्रार्थना करो। तो प्रहलाद महाराज जैसे ही गए और भगवान नरसिंह देव से उन्होंने प्रार्थना की, तो नरसिंह भगवान तत्काल ही शांत हो गए, और क्योंकि उन्होंने नर हरि रूप धारण किया हुआ था तो सिंह के रूप में प्रहलाद महाराज को चाटने लगे। तो उस समय बताते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण, ये बताते हैं कि भगवान नरसिंह देव के हृदय में भी वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ, प्रहलाद महाराज के प्रति वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ। लेकिन उस नर हरि रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे करते? तो ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाए उस लीला में। भगवान भी अपनी कई इच्छा पूरी नहीं करते हैं लीलाओं के दौरान। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान जो है स्वयं आए, कृष्ण स्वयं कृष्ण आए और पुत्र के रूप में, माता यशोदा के पुत्र के रूप में, और भरपूर रूप में वात्सल्य रस का आस्वादन किया। तो यहाँ पर माता शची जो है, जो स्वयं यशोदा है, माता यशोदा है, वो वात्सल्य प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। श्री ग्रंथकार महाशय कहते हैं, भाइयों प्रभु के श्री अंग में जो प्रेम के सात्विक विकार प्रकट होते हैं, उनकी समता अनंत ब्रह्मांडों में नहीं है। उनको ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे जैसे प्रभु गौरचंद नृत्य करते, भक्त वृंद भी वैसे वैसे ही महान आनंद पूर्वक गाते थे। श्री एकादशी के दिन हरि संकीर्तन का विधान है। जगजीवन प्रभु ने उस दिन भी संकीर्तन नृत्य आरंभ किया। पुण्यशाली शिवास पंडित के आंगन में उसका शुभ आरंभ हुआ और गोपाल गोविंद कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। एकादशी को उषा काल से ही प्रभु विश्वंबर ने नृत्य आरंभ किया और सुंदर कीर्तनियों की पृथक पृथक मंडलियां बन गई। एक मंडली शिवास पंडित की बनी, कुछ भक्तजन मुकुंद दत्त को लेकर गाने लगे, कुछ भक्तजन गोविंद दत्त को लेकर कीर्तन करने लगे। परंतु श्री गौरचंद्र के नृत्य के समय तो भक्तजन मिलकर कीर्तन करते थे। महाबली श्री नित्यानंद जी प्रभु के पीछे उनको पकड़ते संभालते हुए फिरते रहते, और अद्वैत आचार्य जी तो प्रभु की आंख बचाकर उनकी पद रज लेते रहते। गदाधर आदि भक्तजन प्रभु के कीर्तन नृत्य में नेत्रों से प्रेमाशुजल भाते हुए आनंद में विवल हो उठते। अब उन 40 पदों में प्रभु का कीर्तन सुनिए। जिनमें अद्भुत प्रेम विकारों से युक्त होकर जगत जीवन प्रभु ने नृत्य किया। चारों ओर गोविंद ध्वनि हो रही थी और शिष्य सची नंदन गौर भक्ति रंग में भरे हुए नृत्य कर रहे थे। प्रभु को घेर कर भक्तगण हरि राम 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 आदि हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। जिस समय प्रभु रोना आरंभ करते हैं तो पहर भर तक रोते ही रहते, भूमि पर उनके केश बिखर जाते पर उन्हें बांधने नहीं देते। उनके उस रोने को देखकर ऐसा कौन काष्ठ हृदय व्यक्ति होगा जो विवल होकर प्रभु के पीछे ना गिर पड़ता। और जब प्रभु हंसते तो बड़े जोर से ठाका मारते हंसकर, यह आनंद विलास भी प्रहर तक चलता रहता। कभी दास्य भाव में भरकर अपनी महिमा को भूल जाते और बार बार जीत लिया कह उठते। कभी अपने आप बड़े ऊंचे स्वर से गाने लगते, वे ध्वनि स्वर ऐसी सुनाई देती मानो ब्रह्मांड को फोड़ती हुई चली जा रही थी। कभी कभी आपका श्री अंग ब्रह्मांड जैसे भारी हो जाता, जिसे पकड़ के रखने की सामर्थ्य किसी अनुचर में नहीं होती थी। कभी क्षण भर में श्री अंग रूई से भी अति हल्का हो जाता और तब बड़े आनंद से उन्हें कंधे पर उठाकर भक्तजन सब घूमने लगते। तो महाप्रभु का शरीर कैसे हो जाता, रूई की तरह हल्का हो जाता कई बार तो, और भक्त लोग उसको उठा के ऐसे घूमने लगते, इतने हल्के हो जाते महाप्रभु। भक्तजन प्रभु को कंधे पर उठाकर आनंद पूर्वक होकर आंगन में नाचते फिरते। जब प्रभु आनंद से मूर्छित हो जाते तो अति भयभीत होकर सब आपके कर्ण फूल में हरी हरी कहते। क्षण क्षण में आपके सर्वांग में महाकाम होता। उस समय आपके अंग ऐसे थर थर हिलते जैसे अत्यंत शीत से बालकों के दांत बसते हैं। क्षण क्षण में आपके शरीर से बड़ा भारी पसीना बहने लगता, मानो शरीर में मूर्तिमय गंगा ही आ गई हो और कभी शरीर धकधकाती हुई अग्नि के समान हो जाता है। उस पर चंदन का लेप करते ही करते सूख जाता है। क्षण क्षण में अद्भुत लंबे श्वास निकलने लगते। उस समय सामने से हटकर सब एक तरफ हो जाते। कभी सब भक्तों के चरणों को पकड़ने के लिए बढ़ते तो भक्तजन डर के मारे इधर उधर चारों तरफ भाग जाते। कभी श्री नित्यानंद के अंग से पीठ लगाकर बैठ जाते और अपने चरणों को उठाकर सभी की ओर देखते हुए हंसते। तब तो प्रभु का इशारा समझकर सब भक्तजन श्री चरण रज रूपी अपूर्व रत्न को लूटने लगते। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि कैसे संकीर्तन के दौरान चैतन्य महाप्रभु भाव की दशा में थे, और इस कारण से ये जो भाव में नृत्य कीर्तन हो रहा था उसके लिए अनुमति नहीं थी सबको, सब लोग ये संकीर्तन नहीं देख सकते थे। इसलिए शिवास पंडित का जो घर था बाहर से बंद कर दिया था, दरवाजा बंद किया था ताकि कोई सामान्य व्यक्ति अंदर ना घुस जाए। तो एक बार की बात है, एक ब्राह्मण आया और उसकी बड़ी तीव्र लालसा हुई। क्या लालसा हुई उसकी, कि मैं भी भीतर जाकर संकीर्तन में भाग ले सकूं। तो ऐसी इच्छा जब प्रकट की तो शिवास पंडित को बुलाया तो शिवास पंडित ने कहा कि भीतर तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर महाप्रभु ने केवल अंतरंग पार्षदों के लिए ही अनुमति दी है, आप भीतर नहीं जा सकते हैं। तो ब्राह्मण ने बड़ी इच्छा प्रकट की, प्रार्थना की कि शिवास पंडित से कि आप कोई तो आप मुझे बताएं, समस्या का हल दें कि किसी ना किसी तरह से ये किन प्रकार मैं ये संकीर्तन देख सकूं, नृत्य देख सकूं महाप्रभु का। तो शिवास पंडित ने कहा कि बाहर एक छिद्र है दीवार में, उस छिद्र से देख लेना। तो ब्राह्मण जो है उस छिद्र से देखने लगा, और जब शिवास पंडित के घर पे वो छिद्र से देखने लगा तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते करते क्या हुए, अचानक उन्होंने संकीर्तन रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, कुछ यहां पर गड़बड़ है, यहां कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं आ गया है। तो शिवास पंडित ने कहा नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है। तो फिर से संकीर्तन शुरू हुआ और फिर से संकीर्तन चलता रहा, और कुछ समय के बाद फिर से संकीर्तन बंद कर दिया। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं कोई बाहर का व्यक्ति जरूर आया यहां पर अंदर भीतर। शिवास पंडित, सर बताओ शिवास कौन है यहां पर। उन्होंने कहा कि महाप्रभु एक ब्राह्मण है बाहर खड़ा है, छिद्र से आपके संकीर्तन को देख रहा है, नृत्य को देख रहा है, उसकी बड़ी उत्कट लालसा है, वो भी संकीर्तन में भाग लेना चाहता है। महाप्रभु ने कहा उसको बुलाओ अंदर, कहा है वो। तो ब्राह्मण जब सामने आया बोले कहां से आए हो, कौन हो तुम। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और केवल दूध पीकर अपना जीवन निर्वाह करता हूं, केवल दूध ही पीता हूं मैं और बहुत तपस्या करता हूं और इसी प्रकार मैं जीवन निर्वाह करता हूं। तो महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु कहते हैं इस ब्राह्मण से, केवल दूध पीने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि केवल सोचे कि मैं दूध ही पीऊंगा केवल तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, यह संभव नहीं है। तो ब्राह्मण महाप्रभु की इस बात को समझने लगा और महाप्रभु के चरणों में गिर गया नम्रतापूर्वक। और धीरे धीरे जब महाप्रभु ने देखा कि उस ब्राह्मण के हृदय में इतनी नम्रता है और बहुत ही नम्र भाव से वो प्रार्थना कर रहा है, तो महाप्रभु का ठीक है, इसको भी आने दो अंदर। तो इस तरह से महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को भी अनुमति दी संकीर्तन में भाग लेने के लिए। तो एक बार शिवास पंडित की सास थी, शिवास पंडित की सास जो है वो महाप्रभु का संकीर्तन देख रही थी छुप कर टोकरी के पीछे, टोकरी से उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था और संकीर्तन देख रहे थे। तो महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, फिर उसी तरह से संकीर्तन करते करते क्या हुआ, अचानक संकीर्तन रोक दिया। अरे कोई और आए यहां पर, कौन है यहां पे? शिवास पंडित ने कहा है कि वो मेरी सास है, वो छुप के संकीर्तन देख रहे हैं, टोकरी से अपने आप को छुपाया हुआ है। तो महाप्रभु ने कहा कि अभी योग्य पात्र नहीं है, इनको यहां से बाहर करो। तो शिवास पंडित ने अपनी सास को वहां से बाहर कर दिया, तो संकीर्तन को नहीं देख पाए। तो इस प्रकार अनेकों लीलाएं वहां पर होती संकीर्तन के दौरान। तो यहां पर यह वर्णन किया जा रहा है, हरे कृष्ण। भारी ज्ञान होने पर दास से भाव में रोते और दांतों में तिनका लगा श्री कृष्ण की चरण सेवा चाहते, क्षण में चक्र की भांति पहर भर तक घूमते ही रहते। उस समय उनके चरण उनके सर से जा लगते, जिस समय जो भाव उदय होता वही अद्भुत होता। इस प्रकार श्री जगन्नाथ सुत अपने नाम के आनंद में नाचते थे, कई बार हिचकियां भरने लगते, उनके सारे अंग मुड़ने लगते, स्थिर नहीं हो पाते और पृथ्वी पर गिर पड़ते। चारों ओर मंगलमय श्री हरि संकीर्तन हो रहा था और मध्य में श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन नृत्य करते थे, जिनके नाम के आनंद में शिवजी को अपने वस्त्रों का ज्ञान नहीं रहता था। जिनके रस में मतवाले ही शिवजी नाचते हैं, वही प्रभु स्वयं नाचते रहते थे। तो स्वयं शिवजी भी नृत्य करते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं। अगर आप नवद्वीप मंडल जाएंगे, अधिकांश द्वीपों में आपको शिवजी का वास मिलेगा, कि अधिकांश द्वीपों में शिवजी जो है क्या करते हैं, गौर नाम का उच्चारण करते हैं और गौर नाम का आस्वादन करते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार क्षेत्रपाल के रूप में शिवजी जो है रक्षा करते हैं, धाम की रक्षा करते हैं और महाप्रभु की लीलाओं में वो भी भाग लेने का प्रयास करते हैं। जिनके नाम से वाल्मीकि तपस्वी बने और अजामिल मुक्त हुआ, जिनके नाम श्रवण से संसार बंध नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु स्वयं अवतीर्ण होकर कलयुग में नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन आता है कि किस तरह से शिवास पंडित के घर पे महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे। ये दर्शन केवल वही कर पाते जो पहले से ही घर में प्रवेश पा लेते, पीछे और कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर पाता। प्रभु की आज्ञा से द्वार मजबूती से बंद था, इसी से नदिया के आम लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। आते तो थे नदिया के लोग, कीर्तन सुनकर दौड़े हुए, परंतु घुस नहीं पाते थे, द्वार पर ही खड़े रह जाते। बाहर खड़े हुए हजारों लोग कोलाहल मचाते और कहते कि जल्दी खोलो किवाड़, हम कीर्तन करेंगे। इधर घर के भीतर जितने भी वैष्णव होते, वे सब कीर्तन के रस में अपनी देह तक के बेसुध रहते, फिर और किसी को सुध किसको। तब तो किवाड़ ना खुलने पर पाखंडी लोग बाहर खड़े खड़े बेशुमार गालियां बकने लगते। कोई कहता ये सब लोग छिपकर अभक्ष्य वस्तु खाते हैं, कोई देख लेगा तो लज्जित होना पड़ेगा, इसलिए द्वार नहीं खुलते हैं। दूसरा कहता ठीक ठीक यही बात है, कुछ ऐसी वस्तु ना खाते पीते तो आठों पहर ऐसे कैसे चिल्ला सकते, जरूर इन लोगों ने नशा किया है। कोई कहता अरे भाई ये लोग मदिरा लाते हैं और रात में लोगों से छिपा कर यहां पीते हैं। कोई कहता निमाई पंडित तो भला मानस था, नारायण ने उसका ऐसा चित कैसे कर दिया। तब कोई होता, कोई कहता ये तो पूर्व का संस्कार मालूम होता है, और कोई कहता नहीं ये संग दोष है। एक तो शासन करने वाला इसका बाप नहीं है, उसके ऊपर वायु का रोग, और फिर संग दोष। जगन्नाथ मिश्र के जाने के बाद, जगन्नाथ मिश्र के उनके जो पिता थे उनका दुर्भाव हो गया था, तो उसके उपरांत ही चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए थे, गया गए थे, और गया जब पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात अपने गुरु श्रीपाल ईश्वरपुरी से हुई थी। और वहां पर गया में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने जब भगवान विष्णु के चरण चिन्ह देखे थे, उन चरण चिन्ह को देखकर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। और बाद में जब श्रीपाद ईश्वरपुरी से मिले तो उनको देखकर कहा कि श्रीपाद गोसाई, आपका दर्शन करने मात्र से ही मेरे 1 करोड़ पूर्वजों का उद्धार हो गया है, अब ये श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है। तो उसके बाद में श्रीपाद ईश्वरपुरी चैतन्य महापुरुष जहाँ निवास कर रहे थे उस आश्रम में आए, और उस समय प्रसाद लगभग लेने ही वाले थे, जब उन्होंने देखा कि श्रीपाद ईश्वरपुरी उनके गुरु आए हैं, तो चैतन्य महापुरुष स्वयं अपने आप श्रीपाद ईश्वरपुरी को प्रसाद परोसा। और रसोई में कौन भोजन बना रही थी, साक्षात लक्ष्मी जी आए थे प्रसाद बनाने के लिए, और श्रीपाद ईश्वरपुरी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान कृष्ण है, लेकिन जब वो भक्त रूप में आते हैं तो वो दिखाते हैं कि किस तरह से आचरण करना चाहिए, एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। और प्रसाद देने के उपरांत चंदन का लेप लगाया, माल्यार्पण किया, और उसके बाद श्रीपाद ईश्वरपुरी से उन्होंने प्रार्थना की कि श्रीपाद मेरी एक प्रार्थना है, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी तो पहले से पहचान गए थे कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। उन्होंने कहा कि क्यों आप मुझसे मजाक करते हैं, मैं जानता हूं कि आप साक्षात नारायण हैं, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूं। तो महाप्रभु फिर से प्रार्थना करने लगे, नहीं नहीं मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, कृपा करके मुझे दीक्षा दें। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा ठीक है, अगर मेरी यही सेवा है तो सेवा समझकर मैं आपको दीक्षा देता हूं। तो जैसे ही दीक्षा ग्रहण किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या हो गया, वो भावमय कीर्तन करने लगे और भावमय नृत्य करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी हाथ तो खड़ा कर रहे हैं लेकिन महामंत्र नहीं बोल रहे हैं, ये तो कलयुग का धर्म है, अगर यही नहीं ले पाएंगे तो फिर और क्या है, है ना। हम तो किसी रैली में तो नहीं हाथ खड़ा कर रहे, भगवान के नामों का उच्चारण किया जा रहा। जोर से बोली थोड़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग जोर से, ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शिवास पंडित के घर से आवाज आ रही है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्रीपादेश्वरपुरी से मिलने से पहले जब नवदीप में थे और अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने भक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे। उस समय बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मणों को उन्होंने परास्त किया था, और यहां तक कि वैष्णव लोग भी परेशान थे क्योंकि उनका भी मजाक उड़ाते थे। ब्राह्मणों का किस तरह से मजाक उड़ाते थे निमाय, पहले तो उनको परास्त करते थे शास्त्रार्थ करके, और शास्त्रार्थ में प्रयास करने के बाद उसके बाद उन्हीं की बात को सही साबित करते, और सही साबित करने के बाद फिर से उनकी बात को गलत साबित करते और अपने को सही साबित करते। तो इस तरह से ब्राह्मण उलझन में पड़ जाते और भाग जाते वहां से, और वैश्य लोग भी, यहां तक कि गदाधर पंडित मुकुंदत, ये लोग भी दूर दूर से देखकर जब निमाय को देखते दूर से भाग जाते कि निमाय आएगा यहां पर परेशान करेगा। और अद्वैत आचार्य तो बहुत ही दुखी हो गए कि उन्होंने कहा जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, दिन रात मैंने शालिग्राम शिला की पूजा की, ये कब आएंगे, कब प्रकट होंगे, अभी प्रकट भी हो गए हैं लेकिन कर क्या रहे हैं, ये तो अपना पांडित्य दिखा रहे हैं, ये भक्ति का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते थे कि जब तक वो श्रीपाद ईश्वरपुरी से नहीं मिले थे, अपने गुरु से नहीं मिले थे, जब तक उन्होंने गुरु की कृपा नहीं प्राप्त की, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार नहीं किया, उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किया। इसी तरह से नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम से निकले थे 12 साल की उम्र में, और 20 साल तक वो यात्रा करते रहे पूरे भारतवर्ष का, और 20 साल के उपरांत 20 या 21 साल के बाद नवदीप धाम पहुंचे थे, जहां सबसे पहले नंदन आचार्य के घर पे उनकी मुलाकात हुई थी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। ये नंदन आचार्य का जो घर है हमारे इस्कॉन मंदिर से बिल्कुल बहुत करीब है, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी में। वहां पे पहली बार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिले थे। नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर पर रुके हुए थे और उनको ढूंढ नहीं पा रहे थे, कोई ढूंढ नहीं पा रहा था, तो उनकी तलाश में चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को भेजा था। महाप्रभु ने कहा कि मैंने सपने में देखा है कि नित्यानंद प्रभु आए हैं और अब हम उन्हें ढूंढ निकालना है कि आप ढूंढ के आओ। तो हरिदास ठाकुर, शिवास पंडित ये सब ढूंढने निकले थे, लगातार 9 घंटे ढूंढते रहे नवदीप में, कर्मियों के, ज्ञानियों के, विषयी लोगों के घर में, सभी भक्तों के घर में जाके ढूंढा, लेकिन कहीं नित्यानंद प्रभु नहीं मिले। तो महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, है ना, कि नित्यानंद प्रभु बड़े गुप्त हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। तो मुरारी गुप्त के घर के बाहर से निकलते गए और मुरारी गुप्त को बुलाया, मुरारी गुप्त चलो चलो, आज मैं एक बहुत विशेष व्यक्ति से मिलाने वाला हूं तुमको। तो चैतन्य महाप्रभु सिंह की तरह धाड़ करते हुए कहां पहुंचे, नंदन आचार्य के घर पर पहुंचे, और नंदन आचार्य के घर पर पहुंचकर वो सबसे पहले वहां पर उनकी मुलाकात हुई नित्यानंद प्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु जब पहली बार मिले महाप्रभु से तो भाव में आए और वहां पर बहुत ही भाव में नृत्य कीर्तन हुआ, और उसके उपरांत कुछ दिनों में महाप्रभु ने आज्ञा दी नित्यानंद प्रभु को कि नवदीप में आप जाओ और घर घर में जाकर आप कृष्ण नाम का प्रचार करो और सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करो, सबको कहो भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, ये सबको जाके कहो नवदीप वासियों को। तब से नित्यानंद प्रभु ने प्रचार करना शुरू किया। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक हमें गुरु और वैष्णव की कृपा ना प्राप्त हो, उनकी आज्ञा ना प्राप्त हो, हम प्रचार कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कली काले रे धर्म हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन। हालांकि कली काल का धर्म हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन जब तक कृष्ण की शक्ति ना हो तब तक कोई क्रांति नहीं आ सकती है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी के ऊपर विशेष कृपा थी नित्यानंद प्रभु की, और इसी कारण से प्रभुपाद जो है सफल हुए, और आज पूरे पृथ्वी भर में अनेकों देशों में भक्त लोग जो है हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये शिवास पंडित वो का जो घर है, ये वो स्थान है जहां से संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ हमारा। शिवास पंडित का घर ये वो स्थान है जहां से संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कोई कहता, क्या कहता, अब आगे जैसे हम बता रहे थे कि किस तरह से लोग वहां बात कर रहे थे, शिवास पंडित के घर पे जब कीर्तन चल रहा था, कोई कहता कल तो होने दो, दीवान के पास जाकर सबके कुछ कह दूंगा और एक एक की कमर कसकर सिपाही इन्हें वहां ले जाएंगे। जो कीर्तन इस राज्य में देश भर में कहीं नहीं था उसको लाग करके अकाल पैदा कर दिया है, इन्होंने पुरानी बातें सब चौपट हो गई हैं, इसी कारण हम समझते हैं कि देव ने वर्षा हर ली है जिसकी धान की फसल अब सब नष्ट हो गई है, एक कौड़ी तक की भी उपज नहीं हो रही है। चोरों की धरोहर को संभालने वाले शिवास को कल मैं ठीक करूंगा और अद्वैत आचार्य को भी देखना कल उसकी क्या दशा होती है। ना जाने कहां से नित्यानंद दूत आकर शिवास के घर में टिका हुआ है, वही ये सब करतूत कर रहा है। ऐसे ऐसे वे नाना प्रकार के भय दिखाते, वे पाखंडी परंतु वैश्य जन आनंद में भरे रहते, कुछ भी नहीं सुनते। फिर कोई कहता ये नाचना ब्राह्मणों का धर्म नहीं है, ये लोग पढ़े लिखकर होकर भी ऐसा कर्म करते हैं। कोई कहता अरे इनका तो मुंह देखना भी उचित नहीं है, इनके साथ बातचीत करने से सारी कीर्ति ही नष्ट हो जाती है, इस नृत्य कीर्तन को यदि कोई भला आदमी देख ले तो वह भी ऐसा ही हो जाता है। मतलब कोई नृत्य कीर्तन को ऐसा देख लेगा तो उसकी भी हालत ऐसी ही हो जाती है। तो एक बार ऐसे ही हुआ, जैसे हमने पहले बताया, यहां पर अभी बताया, जैसे कि कई ऐसे ब्राह्मण लोग थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जो वास्तव में इस संकीर्तन को सुनकर देखकर द्वेष करते थे, और उन लोगों ने यहाँ तक फैसला कर लिया कि अब हम चांद काजी के पास जाएंगे, जो उस राज्य के, उस इलाके के क्या थे, नवदीप के उस समय के मैजिस्ट्रेट थे वो। तो ये चांद काजी के पास जाने का विचार किया। प्रभुपाल कहते हैं कि वास्तव में ये जो झगड़ा कराने का जो झगड़ा कराने की जो प्रथा है, या जो ये भेद की जो भावना आई हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इसको शुरू करने वाले भी जो है हमारे ही कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो ये कर्मकांडी ब्राह्मण गए चांद काजी के पास गए और ये कहने लगे कि ये तो हिंदू धर्म को क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, और इस तरह से ये लोग दिन रात कीर्तन करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, और इस प्रकार से जो सिपाही आकर जो बताने लगा, तो सिपाही को जब भेजा गया तो सिपाही आकर भी वो बार बार कीर्तन करने लगा, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगा। तो नवाब ने कहा तुम्हें क्या हो गया है, है ना, तुम्हें तो मैंने भेजा था पता लगाने के लिए, लेकिन तुम भी हरे कृष्ण कर रहे हो। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जिसकी जुबान में आ जाता है फिर छूटता नहीं है, इसकी लत लग जाती है। तो चांद काजी उस समय सीमंत द्वीप में रहते थे, नवदीप के बारे में कल बताया था जैसे हमने, तो उसे नौ द्वीपों में एक है सीमंत द्वीप। तो सीमंत द्वीप में चांद काजी का महल था। तो इनका पूरा नाम था मौलाना सिरोजुद्दीन चांद काजी। ये एक द्वापर युग में भगवान कृष्ण की लीला में कौन थे, कंस थे, और ये कंस ही बन के आए थे चांद काजी। तो शची देवी के पिता नीलाम्बर चक्रवर्ती उन दिनों इस गांव में रहते थे, और चांद काजी उस समय बंगाल के जो राजा थे नवाब हुसैन शाह उन्हीं के राज्य में कार्य करते थे। तो इस प्रकार कर्मकांडी ब्राह्मणों ने इस प्रकार बताया, और चांद काजी ने क्या किया, फिर स्वयं जाकर कुछ सैनिकों को लेके गए और शिवास पंडित के घर पर गए, और वहां जाकर क्या किया, खोल को तोड़ डाला, मृदंग तोड़ डाला, भक्तों के ऊपर आक्रमण किया और वहां से चले गए। कुछ समय के बाद चैतन्य महापुरुष शिवास पंडित के घर पहुंचे। जब शिवास पंडित के घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृदंग टूटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि चांद काजी आया था, सैनिकों को लेकर आया था, और उसने मृदंग फोड़ डाला और ये हालत कर दी हम सबकी। तो चैतन्य महापुरुष ने कहा ठीक है, आज चांद काजी को मैं सबक सिखाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं खत्म कर डालूंगा मैं इसको। तो चैतन्य महापुरुष ने क्या किया, प्रभुपाद बताते हैं कि 100,000 लोगों को इकट्ठा किया चैतन्य महापुरुष ने, और संकीर्तन शुरू किया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि पहला जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने शुरू किया था, चैतन्य महापुरुष ने शुरू किया, गांधी ने नहीं शुरू किया, आज से 500 साल पहले। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सायंकाल में जब अंधेरा हो गया, सूर्यास्त होने के बाद लाख लोगों को लेकर, 100,000 से ज्यादा लोगों को लेकर, जिनके हाथ में मशाल थे, टॉर्च लाइट था, तो चारों तरफ क्या था, प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था, और बड़ी तेजी से सीमन देव की ओर गए, चांद काजी के घर और जा रहे थे, संकीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहां जाकर क्या है कि जितने लोग घुसे, जैसे चांद काजी के घर पे, बगीचे में घुसते ही सारे गमले तोड़ डाले, बगीचा सारा उजाड़ दिया, और उसके बाद चांद काजी को पुकारने लगे, चांद काजी कहाँ हो तुम, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम, कहाँ छू गए तुम। तो चांद काजी बहुत घबराया हुआ था, वास्तव में अंदर जाके कमरे में घुस गया वो, और चांद काजी ने सोचा लेकिन अब और बचने का तरीका नहीं है, अब तो समक्ष आना ही पड़ेगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब भीतर पहुंचे तो महाप्रभु ने कहा क्यों छुप रहे हो तुम, कहाँ गए थे। तो चांद काजी ने कहा देखो बेटा, रिश्ते में तो मैं तुम्हारे मामे के समान हूँ, मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ रिश्ते में, क्योंकि तुम्हारे जो नाना है नीलाम्बर चक्रवर्ती वो बहुत ही प्रिय है मेरे, और तुम मेरे भांजे के समान हो, तो तुम इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो तुम्हारा अतिथि हूं, और अतिथि को, अतिथि का स्वागत इस तरह से होता है कि अतिथि के आने पर कोई ऐसा छुप जाता है, ये कौन सा शिष्टाचार है? तो हम तो अतिथि हैं और तुम जाके भीतर छुप गए। तो चांद काजी कहते हैं अतिथि से हो, लेकिन ये इस रूप में अगर अतिथि आए तो फिर सोचना पड़ेगा। तो चांद काजी ने कहा कि 100,000 लोगों को लेकर आए हो और कहते हो कि मैं अतिथि हूं, तो मैं अंदर जाके छुपूंगा नहीं तो क्या करूंगा। चांद फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ तुमने जाकर मृदंग क्यों थोड़ा, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? तो चांद काजी ने वास्तव में ये बोला कि हाँ ये तो है कि ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने मृदंग तोड़ा। वास्तव में जिस दिन मैं ये कार्य करके आया था उसी रात्रि के समय मुझे एक विशेष रूप का दर्शन हुआ। उसके हाथ में नाखून ही नाखून थे, आधा शरीर उसका नर का था, आधा शरीर उसका शेर का था, और उसे छाती में मेरे नाखून रखे और चांद काजी ने अपनी छाती खोलकर दिखाई जिसमें नरसिंह भगवान के नाखून का चिन्ह था। और उसने कहा मुझसे, उस रात्रि में मुझे बड़ा भय लगा, और उसने मुझे कहा, क्या कहा, कि आज के बाद तुमने संकीर्तन को रोकने की कोशिश की तो तुम्हें फाड़ डालूंगा मैं, आगे से ये गलती कभी मत करना। तो तब से मैं बहुत घबराया हुआ हूं, और ये देखो निशान, वो नाखून के निशान देखो मेरे छाती में। तो आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि संकीर्तन आंदोलन को कोई नहीं रोकेगा हमारे राज्य में। तो आज भी हम देखते हैं कि जब 1947 में बताते हैं जब हिंदू मुसलमान का बहुत झगड़ा चल रहा था स्वतंत्रता के समय, तो उस समय भी नवद्वीप में या सीमत द्वीप में वहां पर कोई झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुसलमानों के बीच, वहां तब भी शांति थी और आज भी शांति है। आज भी वहां पर हजारों की तादाद में भक्त लोग जाते हैं संकीर्तन करते हुए चांद काजी की समाधि पर, लेकिन आसपास के जितने भी मुसलमान लोग हैं वो बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि चांद काजी के वंश में जितने लोग हैं वो सब क्या करते हैं, अभी भी जो है वो समर्थन करते हैं। तो चांद काजी ने इस प्रकार आज्ञा दी थी, लेकिन महाप्रभु ने कहा एक बात बताओ चांद काजी, एक बात बताओ कि आप तो जानते हो कि बैल जो है वो पिता के समान है और गाय जो है वो माता के समान है, लेकिन आप ये गोहत्या क्यों करवाते हो, ये गोहत्या क्यों करते हो? कोई अपने माता पिता का हत्या करता है क्या? और विशेष रूप से जब माँ दूध देना बंद कर दे तो उसको मार दिया जाता है क्या? तो ये गोहत्या क्यों की जाती है, ये कौन सा धर्म है? तो चांद काजी कहते हैं जहां तक कुरान की बात है उसमें गोहत्या के लिए कहीं नहीं कहा गया है, ये लोग तो अपना अपना ही अर्थ निकाल रहे हैं। और कुरान जो शास्त्र लिखा गया है वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार लिखा गया है जो उस समय आवश्यक था, लेकिन वास्तव में जो सनातन धर्म है वो तो वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है। हमारे कुरान में भी दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है वो मार्ग जिसमें क्रमशः व्यक्ति इंद्र तर्पण करके क्रमशः विकास करता है, और निवृत्ति मार्ग वो है इसमें त्याग कर वो भगवान की शरण लेता है। तो ये रास्ता तो हमारे कुरान में भी निर्धारित है। तो इस प्रकार जब संवाद हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी की इस बात को समर्थन किया, और चांद काजी ने फिर क्षमा मांगी, और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के ऊपर विशेष कृपा दिखाते हुए चांद काजी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो यहां पर एक चंपक वृक्ष है, चंपक वृक्ष है चांद काजी की समाधि में, एक चंपक का वृक्ष है, साथ में नीम का वृक्ष भी है। चंपक वृक्ष जो है कम से कम 500 साल पुराना है, वो नीम का वृक्ष भी 500 साल पुराना है। यह संकेत देता है कि वहां पर महाप्रभु की अभी भी कृपा है और चांद काजी भी वहां पर मौजूद हैं भक्त के रूप में। तो वो चांद काजी जो कंस थे जिनका स्वयं परम भगवान कृष्ण ने वध किया, वही कंस चांद काजी के रूप में आए तो गौरंग महाप्रभु उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो ये महाप्रभु की विशेष कृपा है, जब गौर लीला के दौरान किसी भी असुर या किसी भी दुष्ट को मिलते तो उसको मारा नहीं जाता है बल्कि हरिनाम के माध्यम से उसको कृष्ण प्रेम दिया जाता है। तो ये चांद काजी के बारे में आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। तो ये भी जो घटना है ये हम जितने भी लीलाएं बता रहे हैं, ये सारी लीलाएं वो बता रहे हैं जो शिवास पंडित के घर पे घटित हुए। तो आगे क्या हुआ फिर देखिए, जैसे हमने बताया कि कर्मकांडी ब्राह्मण जो है वो इस प्रकार सोच रहे थे कि हम जाएंगे और जाकर चांदकाजी को बताएंगे। सैकड़ों आदमियों ने एक व्यक्ति को घेर कर कलह मचा रखा है, ऐसे कीर्तन को ना देखने में क्या बुराई है हमारी? ये भी कोई जप है या तप है या तत्व ज्ञान है जिसे ना देखने पर हम अपने कर्मों को दोष विचार करें? ये सब लोग चावल, केला, मूंग, दही इत्यादि वस्तुओं को इकट्ठी करके एक साथ मिलकर खाते हैं और जाति पाति का सत्यानाश कर रहे हैं। इस प्रकार प्रयास करने के लिए पाखंडी लोग देखने को आते कि देखो तो ये पागल लोग क्या करते हैं। इस प्रकार बकवास कर सब पाखंडी घर लौट आते हैं। एक जाता है तो दूसरा दरवाजे पर आ अटकता है। जब मार्ग में दो पाखंडियों की भेंट होती तो परस्पर गले लगाकर हंसते हुए लोटपोट हो जाते। फिर जिसने कीर्तन नहीं देखा उसको पकड़कर वहां ले जाते। कोई कोई तो किसी के कहने सुने पर भी वहां नहीं जाता। कोई कहता, भाई हमने तो यही देखा है और सुना है कि निमाई पंडित को लेकर ये लोग पागल हो गए हैं। ये कीर्तन की ध्वनि है या शिवास के घर में मेंढकों की टर्टर शोर मचा रहा है? ये कीर्तन की ध्वनि है या मेंढक टटर कर रहे हैं वहां पर? अथवा दुर्गा के उत्सव में साड़ी लोगों की होड़ मची हुई है, यानी कि साड़ी मतलब यहां पर है जो गीत गाने वाले गायक विशेष, जब देखा तब बस है हाय हाय की सुनाई देती है। तो क्या सुनाई देता है शिवास पंडित के घर से? यही आवाज निकलती है हाय हाय या हरी बोल, बस यही सुनाई देता है। इन लोगों ने वाणी को कलंकित कर डाला है। बड़े आश्चर्य की बात है कि नदिया में जहां हजारों बड़े बड़े भट्टाचार्य हैं वहां ऐसे ढोंगी लोग भी रहते हैं। तो नदिया में कई बड़े बड़े ब्राह्मण रहते थे, भट्टाचार्य है ना, भांगोपाध्याय, ये सब बड़े बड़े ब्राह्मण थे लेकिन भक्त नहीं थे। अधिकांश जो नवदीप में लोग थे वो चंडी या काली की उपासना करते थे। तो इस प्रकार ये लोग उपवास किया करते थे। कल इस नदिया से शिवास वामन के घर को तोड़ फोड़ कर गंगा में बहा देना है। उस वामन को भगा देने में ही गंगा गांव का कुशल है, नहीं तो इस गांव को यवन राजा खा जाए। यदि इस प्रकार से पाखंडी लोग कोलाल मचाते थे तथापि वे सब महाभाग्यशाली हैं, कारण कि उन्होंने प्रभु के साथ एक ही गांव में जन्म लिया और प्रभु के इन सब चरित्रों को देखा और सुना। इधर श्री चैतन्य देव के भक्त सब कृष्ण रस में उन्मत्त रहते, बहिर्मुख जनों के वाक्य में कुछ भी उनके कानों में प्रवेश तक नहीं कर पाते। कई बार भक्त लोग बड़े थक जाते संकीर्तन करते करते, तो महाप्रभु ने एक दिन देखा कि भक्त लोग सब थके हुए हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनको कुछ खिलाया जाए। क्या खिलाया जाए? आम। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, शिवास पंडित के घर पे आम का बीज बोया और कुछ ही समय में वो बीज अंकुरित हुआ और वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ, जिसमें लगभग 200 फल निकल आए आम के। और ये कैसे आम के फल थे, जिसमें ना छिलके थे ना गुठली थे, इसमें गुठलियां भी नहीं थी और ना छिलके थे, सीधा निकालो और खा जाओ, फ्रेश जूस, रियल जूस नहीं, फ्रेश जूस, सीधा तोड़ो और खा जाओ, जिसमें गुठली भी नहीं और छिलके भी नहीं। तो इस तरह से लगातार जो एक दर एक साल तक लगातार सब भक्तों को आम खाने का खूब मौका मिला। एक और स्थान है आम्रघाट। आम्रघाट जब हम लोग जाते हैं, जब गोद्रुम द्वीप में ये स्थान आता है तो अगले दिन जब जाते हैं आम्रघाट, तो ये वो स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ आते थे और संकीर्तन करते थे, और जब भक्त लोग थक जाते थे तो वहाँ पर इसी प्रकार से वो क्या करते थे, आम का फल पैदा कर दिया करते थे भक्तों के लिए, और सब भक्तों को आम खाने को मिल जाता था खूब, है ना। तो ये तो महाप्रभु की अचिंत शक्ति है, भगवान की अचिंत शक्ति है, जहाँ पर जो पैदा करना चाहें पैदा कर सकते हैं, नॉन सीजनल फ्रूट्स भी पैदा कर सकते हैं, है ना। यद्यपि इस प्रकार पांडव पाखंडी लोग कोलाहल मचाते थे तथापि वे सब महाभाग्यशाली हैं, कारण कि उन्होंने प्रभु के साथ एक ही गांव में जन्म लिया और प्रभु के इन सब चरित्रों को देखा और सुना। इधर श्री चैतन्य देव के भक्त सब कृष्ण रस में उन्मत्त रहते, बहिर्मुख जनों के वाक्य कुछ भी उनके कानों में प्रवेश तक नहीं कर पाते। भक्त जन जय कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली आनंद से दिन रात गाते रहते, और विश्वंभर देव भी रात दिन भक्तों के साथ नाचते रहते। किसी को भी थकावट नहीं होती थी, सबकी देह सत्वमय थी, कहने को तो कीर्तन एक वर्ष तक हुआ तो लगातार एक साल तक ये कीर्तन चलता रहा, रात को भी कीर्तन चलता रहता था, है ना। हम लोग तो एकादशी के दिन भी नहीं जाग पाते हैं रात को, है ना, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपने और कार्यों में तो रात को नहीं जा पाते हैं, लेकिन पूरे एक साल कीर्तन चलता रहा। दिन में भी ये लोग कीर्तन करते थे, दिन में भी इनकी अलग अलग लीलाएं होती थी, महाप्रभु की अनेकों लीलाएं होती थी, और रात को शिवास पंडित के घर में आकर फिर से संकीर्तन शुरू हो जाता था। किसी को भी थकावट नहीं होती थी, उस सभी के देह सत्वमय थे। परंतु इस कीर्तन में कितने युग बीत गए, श्री चैतन्य देव के साथ आनंद में विभोर होकर ये कोई भी नहीं जान सका। जैसे महाराज विलास में कितने ही युग बीत गए थे परंतु गोपियों ने उसे आधा क्षण ही समझा, ऐसे ही श्री कृष्ण का प्रकाश अचिंत है, श्री चैतन्य चंद्र के भाग्यवान दास ही इसे जानते हैं। इस प्रकार महापुरुष श्री विश्वंभर नृत्य कर रहे थे, अब केवल एक पहर राज शहर रह गई थी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के साथ ये जो संकीर्तन की लीला हुई, और इसी शिवास पंडित के घर पे, इन्हीं शिवास पंडित के घर पे और भी कई लीला हुई, और इसमें एक विशेष और एक लीला घटित हुई जिसको कहने के लिए इतना समय नहीं हमारे पास, लेकिन थोड़ा बहुत बोलेंगे और 10 मिनट के लिए। तो ये लीला है महाप्रकाश लीला। महाप्रकाश लीला ये है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों भक्तों को अपने नाना प्रकार के रूप दिखाए उनकी इच्छा के अनुसार, और उन्होंने भक्तों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया, भक्तों को बुला बुला कर उन्होंने अलग अलग वरदान दिए। तो इसको कहते हैं महाप्रकाश लीला, जो लगातार कितने घंटे चली, लगातार कितने शत प्रहर लीला, 21 घंटे लगातार चले। तो ये कैसे हुआ, इतने में श्री चैतन्य चंद्र सब शालिग्राम शिलाओं को अपनी गोद में लेकर विष्णु सिंहासन पर जा बैठे। श्री विश्वंभर के बोध से सिंहासन चरमर करने लगा। तो क्या हुआ कि जैसे सिंहासन में चैतन्य महाप्रभु बैठे तो क्या हुआ, सिंहासन हिलने लगा उनके भार से। तो फिर क्या हुआ, किसकी आवश्यकता पड़ी, नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता पड़ी, जो स्वयं बलराम जी हैं। सिंहासन को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सिंहासन में अनंत देव का अधिष्ठान हो गया और वह टूटने से बच गया। उस पर श्री गौरांग देव झूलने लगे, उसी सिंहासन को स्पर्श कर श्री नित्यानंद उसमें अधिष्ठ हो गए, जिससे वह टूटने से बच गया। श्री चैतन्य चंद्र की आज्ञा से कीर्तन बंद हो गया, तब वे गरजते हुए अपने तत्व को कहने लगे, कलयुग में कृष्ण मैं ही हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही वह भगवान देवकी नंदन हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मैं नाथ हूं, आप लोग जिसका यश गाते हो वह सब मैं ही हूं, आप सब मेरे दास हैं, आप सबके लिए ही मेरा अवतार हुआ है, आप जो कुछ मुझे देते हो वही मेरा हार है, अतएव आप लोगों ने भी अपना सर्वस्व मुझे भेंट कर दिया है। इस पर शिवास बोले, ये सब तो है ही आपका प्रभु। प्रभु बोले, देखो ये तो मैं सब खा चुका हूं। अद्वैत आचार्य बोले, बड़ा ही मंगल हुआ प्रभु। तब सब सेवक लोग व्यंजन लाकर प्रभु के हस्त कमल में अर्पण करते रहे और प्रभु निजावेश में आनंद पूर्वक उन्हें भोजन करते हैं। आपने दूध दही मक्खन सब आरोग लिया तथा लाओ और क्या कहा है कहते हुए बार बार पुकारने लगे। शक्कर मिले हुए संदेश आदि अनेक प्रकार की मिठाइयां, तो नाना प्रकार के भोग जो है तैयार किए गए थे महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, और सभी भक्तों ने नाना प्रकार के व्यंजन लाए। क्या क्या व्यंजन लेकर आए, मिठाइयां, मूंग, नारियल, जलगिरी सहित केला, चिवड़ा, खील आदि बहुत कुछ भोग लगाकर प्रभु बोले, और लाओ क्या है। व्यवहार में 200 आदमियों का भोजन पलक मारते मारते खाकर प्रभु बोले, और क्या है। अब 200 लोगों का भोजन ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने, खा लिया, फिर भी कहते हैं और क्या है। तो ऐसा लग रहा था ये गोवर्धन की लीला चल रही है। इसी तरह से जब गिरिराज जी को भोग लगाया गया था, अनुकूट महोत्सव बनाया था और ब्रजवासी अनेक प्रकार से नाना प्रकार के व्यंजन ला रहे थे, तो गिरिराज जी बार बार क्या कर रहे थे, अनियोर अनियोर और लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि और क्या है, और क्या लेके आओ। व्यवहार में 200 आदमियों का भोजन पलक मारते मारते खाकर प्रभु बोले, और क्या है, लाओ तो, यहां तो कुछ भी नहीं है। ये देख सुनकर भक्तजन सब भयभीत होकर भगवान को स्मरण करने लगे। फिर सब हाथ जोड़कर डरते हुए बोले, प्रभु आपकी महिमा हम लोग क्या जानते हैं, अनंत ब्रह्मांड जिसके उदर में हो उसके लिए हमारी इस तुच्छ भेंट से क्या हो सकता है। जिसके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसको क्या भोजन खिला सकते हैं आप। तो तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी प्रकार जब वो अधिक प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे थे और सारो भट्टाचार्य उनको प्रसाद खिलाते या अन्य भक्त लोग उनको प्रसाद खिलाते, तो चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ज्यादा लेने से इनकार कर देते। वो बोलते हैं कि मैं तो सन्यासी, इतना प्रसाद मत खिलाओ। अद्वैत आचार्य ने भी जब उनको प्रसाद खिलाया शांतिपुर में जब पहुंचे थे नित्यानंद प्रभु के साथ, वास्तव में उनकी इच्छा थी वृंदावन जाने की, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, क्योंकि महाप्रभु तो विरह में थे वृंदावन के, तो नित्यानंद प्रभु बार बार ये कह रहे थे, देखिए महाप्रभु देखिए ये है यमुना, हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। ऐसे नाव चलता रहा चलता रहा चलता रहा और कहाँ पहुंच गए, शांतिपुर पहुंच गए। शांतिपुर अद्वैत आचार्य का घर वहां पर है जो कि मायापुर से करीब 1.25 घंटे की दूरी पर है। तो वहां शांतिपुर में पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, ये तो शांतिपुर ले आए तुम मुझे, कहाँ है वृंदावन। तो अद्वैत आचार्य वहां पहुंचे और कहा कि जहां पर आप हैं वही है वृंदावन, जहां पर आप हैं महाप्रभु वही है वृंदावन, ये वृंदावन ही तो है, आइए मुझे सेवा का मौका दीजिए। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के घर पर जाते हैं और वहां पर अद्वैत आचार्य उनके लिए बहुत सारा व्यंजन प्रसाद तैयार करते हैं। सीता ठाकुरानी जो है बहुत नाना प्रकार का व्यंजन तैयार करते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रसाद परोसते हैं और प्रसाद लेना शुरू करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं प्रसाद लेते हुए, वो कहते हैं कि देखो मैं तो सन्यासी हूं, मेरे लिए इतना प्रसाद लेना ठीक नहीं है, है ना, इतना सारा प्रसाद मैं कैसे ले सकता हूं। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, क्या बात करते हैं महाप्रभु, आप तो हर जगह प्रसाद खा रहे हैं, वहां जगन्नाथपुरी में प्रसाद खा रहे हैं, वहां पे 56 प्रकार का भोग आपको रोज प्रत्येक दिन लगता है, है ना, और अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके उदर में है, पता नहीं कितने लोग आपको ठाकुर जी को आप भोग लगा रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, आप तो कितना खा रहे हैं, तो आपके लिए इतना सब भोजन क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नित्यानंद प्रभु मजाक करने लगे, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि 3 दिन से मुझे कुछ, मैंने कुछ खाया नहीं है, इससे क्या होगा, क्योंकि वह अवधूत थे तो नित्यानंद प्रभु दूसरा भाव प्रकट कर रहे थे, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है तो इससे क्या होगा, ये तो बहुत कम है। तो अद्वैत आचार्य थोड़ा और ज्यादा उनके साथ मजाक करते हैं और क्रोध की भावना में बोलते हैं, अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि तुम तो ढोंगी सन्यासी हो, है तुम तो ढोंगी सन्यासी अवधूत बने फिरते हो और इतना भारी भारी ज्यादा भोजन खाते हो, ये भोजन पर्याप्त नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु भी अंदर से बड़े खुश होते हैं और चावल लेकर अद्वैत आचार्य के शरीर पर फेंकते हैं, उनके ऊपर फेंकते हैं, और चावल जैसे अद्वैत आचार्य के शरीर पर लगता है तो अद्वैत आचार्य क्या करते हैं, भाव में कीर्तन नृत्य करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु से ये कह रहे हैं, भक्त लोग कह रहे हैं कि अनंत ब्रह्मांड जिसके उदर में हो उनके लिए हमारी इस तुच्छ भेंट से क्या हो सकता है। प्रभु बोले, भक्त की भेंट तुच्छ नहीं होती, लाओ लाओ झटपट, क्या है कि भक्त की भेंट कभी तुच्छ नहीं होती है। भक्त जन बोले, प्रभु अब तो केवल कर्पूर सुवासित तांबुल मात्र रह गए हैं, अब तो केवल कर्पूर और तांबुल ही रह गया है, प्रसाद लेने के उपरांत तो यही होता है केवल लेने के लिए, और वही बचा है। गोवर्धन को भी संतुष्ट इसी तरह से किया था लेकिन दूसरी तरीके से, जिस तरह से गोपाल चंप में वर्णन आता है, जब ब्रजवासियों ने नाना प्रकार के व्यंजन बना दिए और गिरिराज जी को भोग लगाने लगे, वो भी चिंता में पड़ गए, तो गिरिराज जी तो खाए जा रहे हैं लेकिन पेट ही नहीं भर रहा उनका, तो आखिर में फिर क्या, वो टोकरी में तुलसी दल ला के दिए गिरिराज जी को, और तुलसी दल लेकर फिर गिरिराज जी ने ढकार ली। तो इसी तरह से यहां पर ही बोल रहे हैं कि हमारे पास और कुछ है नहीं, बस इतना ही रह गया है, आप इसी को ग्रहण करें, कर्पूर सुवासित और तांबुल मात्र रह गए हैं। प्रभु बोले, लाओ वही दो, कुछ चिंता मत करो। तब तो सबको बड़ा आनंद हुआ और भय दूर हुआ, जिनका अधिकार था केवल वे प्रभु को पान खिलाने लगे। श्री भगवान को पान खिलाने का, मुख में देने का अधिकार केवल उनकी कांता शक्ति को ही है। श्री गदाधर गोस्वामी महाप्रभु की कांता शक्ति है, केवल वही ईश्वर भाव विष्ट श्री गौर को मुख में पान देने लगे। सब दासजन बड़े उमंग के साथ प्रभु को पान देने लगे हैं और प्रभु सबके प्रति हंसते हुए हाथ बढ़ाकर उन्हें लेने लगे। प्रभु का हृदय गंभीर है परंतु भार क्षण क्षण में हंस रहे थे, ये देखकर सब भक्तों के चित्त में भय का संचार हुआ। इतने में प्रभु दोनों आंख लाल लाल करते हुए हुंकार करते हुए बोले, नाड़ा नाड़ा पुकारने लगे। नाड़ा किसका नाम था? अद्वैताचार्य। तो अद्वैताचार्य को पुकार रहे हैं अब चैतन्य महाप्रभु, नाड़ा नाड़ा। उस समय भक्त वृंद ने प्रभु को महादंड दाता के रूप में देखा, किसी की शक्ति नहीं कि सम्मुख हो। श्री नित्यानंद जी महाप्रभु के सिर पर छत्र धारण कर रहे थे और श्री अद्वैत प्रभु के सामने हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे थे। सब भक्त वृंद महाभय के मारे हाथ जोड़कर सिर नीचा करके श्री चैतन्य चंद्र के चरणों के चिंतन करने लगे। इस ऐश्वर्य लीला के सुनने से जिसको सुख होता है वह अवश्य ही श्री चैतन्य चंद्र के श्री मुख का दर्शन पाएगा। ये वृंदावन दास ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं भक्तों को कि जो ये लीला सुनते हैं, जो अभी प्रसंग बताया, जो भक्त लोग सुनकर क्या होते हैं, जिनका मुख जो हर्षित होते हैं, जिनको सुख होता है, जो आनंदित होता है लीला को सुनकर, निश्चित रूप से क्या होगा, उनको चैतन्य चंद्र का दर्शन प्राप्त होगा। जो वक जहां पर है वे वहीं पर अचल हैं, प्रभु की आज्ञा बिना कोई ऊपर उठ नहीं सकता। तब प्रभु अद्वैत आचार्य के मुख की ओर ताकते हुए बोले, वर मांगो, आपके लिए मेरा यह अवतार हुआ है। इसी प्रकार सभी भक्तों को और देख देख कर हंसते हुए उनसे कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। तब क्या कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बोल रहे हैं कि आप सब क्या करें, वर मांगे। सभी भक्तों को वर मांगने का मौका दे रहे हैं। तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य, क्योंकि सब में वरिष्ठ थे, तो उनको कहा कि आप वर मांगिए। इसी प्रकार सब भक्तों की ओर देख देखकर हंसते हुए उनसे कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। इस प्रकार प्रभु अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते थे, जिसे देखकर भक्त जन सुख के सागर में बह चले जा रहे थे। श्री चैतन्य चंद्र की लीला अचिंत है, समझ में नहीं आती है। क्षण में ऐश्वर्य को प्रकट करके वे फिर मूर्छित हो जाते, फिर भारी गान लाकर प्रभु रोने लगते और क्षण क्षण में दास्य भाव को प्रकट करते। वैश्यों को देखकर रोते हुए उन्हें गले लगाते और सबको भाई बंधु कहकर बोले, प्रभु ऐसा लीला करते हैं कि कोई समझ में नहीं आता है। वास्तव में उनकी सेवा किए बिना उनके तत्व को कौन समझ सकता है। प्रभु के चरित्र को देखकर भक्तगण सब हंसते हैं और कहते हैं कि नारायण अवतीर्ण हुए हैं। कुछ देर तक प्रभु गौर सुंदर विष्णु सिंहासन पर बैठे रहे और फिर आनंद मूर्छा को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार यहां पर यह वर्णन हुआ है इस अध्याय में कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने ये महाप्रकाश की लीला प्रारंभ की थी और अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, सभी भक्तों को क्या करेंगे, वरदान प्रदान करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे जितना समय मिलेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि किसी कथा में इसमें हम लोग कोई डिस्काउंट करें या कहीं काट छाट करें और संक्षेप में बता दें, क्योंकि जब जब हमें समय मिलेगा इस कथा को आगे बढ़ाया जाएगा और जब जब आप भक्तों से आशीर्वाद मिलेगा तो हमें बोलने का जो अवसर प्राप्त होगा, तो तब तक हम इस कथा को आगे बढ़ाएं। तो ये कहकर हम यहीं विराम देते हैं और आगामी जो गौर पूर्णिमा है उसमें आप सब भक्तों से प्रार्थना है कि उत्साहित होकर इस पूर्णिमा भाग लें। और सबसे अच्छा तरीका है गौर पूर्णिमा मनाने का, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम लोग खूब हरिनाम करें, हरिनाम लें, हरिनाम संकीर्तन में भाग लें और क्या करें, नृत्य भी करें साथ में। तो संकीर्तन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, एक तो गाना जरूरी है और साथ में नृत्य करना भी जरूरी है। तो ये नहीं कि कुछ लोग गा रहे हैं और पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, है ना। तो तभी हरिनाम जो है पूरा होता है जब साथ में नृत्य भी हो। तो गौर पूर्णिमा के दिन हम चाहेंगे कि आप प्रातःकाल यहाँ पर आ जाएं, 4:30 बजे मंगल आरती से शुरू करें और यहाँ पर रहें रात्रि तक 10 बजे तक, और पूरे दिन यहाँ पर कथा और कीर्तन का पूरा आनंद लें। क्योंकि उस दिन तो हम लोग कहीं शोभा यात्रा में नहीं जा रहे हैं, इसमें हम फेस्टिवल कमेटी का विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छा परिवर्तन किया कि पहले ही शोभा यात्रा रख ली ताकि गौर पूर्णिमा के दिन उत्सव के दिन उपवास करते हुए हम लोग साथ साथ श्री राधा पार्षद समक्ष और श्री गौरताई के समक्ष हम लोग क्या करेंगे, संकीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। और पंडाल का कार्यक्रम भी है जिसमें बहुत ही सुंदर नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, गौर कथा की वहाँ पर भी होगी और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो वहाँ पर भी आप आएँ, कल पंडाल में कार्यक्रम होगा कल और परसों, तो आप सभी भक्त लोग आए। और हम लोग फिर से फेस्टिवल कमेटी का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, बाहर भी प्रकाश है, भक्तों के हृदय में भी प्रकाश है, सब जगह प्रकाश है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, बोले गौर सुंदर की, बोलो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद।